कामायनी के असाधारण महत्व के कारण कृति रचनाकारों का ध्यान भी उसकी ओर बराबर आकृष्ट हुआ है। दिनकर ने काफी विस्तार में और काफी तैयारी के साथ एक निबंध लिखा है, कामायनी दोष रहित दूषण सहित। शीर्षक अर्थवान है और निबंध भी बढ़िया है। नगेंद्र ने कामायनी की इस विशिष्ट स्थिति को लांजाइनस का एक बड़ा सटीक उद्धरण देकर व्यक्त किया है। महान प्रतिभा निर्दोषता से बहुत दूर होती है, क्योंकि सर्वांगीण शुद्धता में अनिवार्यतः क्षुद्रता की आशंका रहती है और औदार्य में कुछ न कुछ छिद्र अवश्य रह जाते हैं। वही पृष्ठ 15। दिनकर के इस निबंध में कामायनी को समझने की व्यग्रता है, जो कि एक समान रचना धर्मी में होना स्वाभाविक है, पर कामायनी का विधान समझने में उन्होंने भी चूक की है, जिसका मुख्य कारण इस काव्य कृति को स्थूल घटना के धरातल पर समझने का आग्रह है। जैसा मैंने पहले कहा है, कामायनी में स्थूल घटनाक्रम का महत्व है, पर इस स्थूल घटनाक्रम को सूक्ष्म सांकेतिक अर्थ से मिलाकर ही रचना के संश्लिष्ट रूप को समझा जा सकता है। दिनकर की एक मुख्य आपत्ति यह है कि कर्म का महत्व प्रतिपादित करने वाले श्रद्धा और मन अंततः संसार छोड़कर हिमालय की गुफा में चले जाते हैं। वे युगल वहीं अब बैठ संस्कृत की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। दिनकर का इस संदर्भ में कहना है, विचारने की बात यहाँ यह है कि हिमालय के शिखर पर कितनी आबादी थी जिसकी सेवा मन और श्रद्धा कर रहे थे। कवि का भाव कदाचित यह है कि जो तीर्थयात्री वहाँ पहुँचते थे उन्हें दंपत युगल धर्मोपदेश दिया करते थे। उपदेश देना भी सेवा के अंदर गिना जा सकता है, किंतु सेवा का वह कर्म नहीं ज्ञान पक्ष है। पंत प्रसाद और मछली शरण गुप्त, पृष्ठ 91। काव्य पंक्तियों का यह पूरा शाब्दिक अर्थ करना सूक्ष्म सांकेतिक रचना को स्थूल कथा के धरातल पर व्याख्यायित करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। यहाँ हिमालय या कैलाश का स्थूल रूप रचना के हल्के सांकेतिक अर्थ से अनुशासित होता है, और इसीलिए सचमुच के हिमालय की कल्पना मन में जागृत नहीं होती। यद्यपि अन्योक्ति की तरह का साफ अलग प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान भी अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि रचना के दोनों अर्थ स्तरों में हल्का अंतर होते हुए भी वे अलग अलग क्षेत्रों में से ग्रहित नहीं हुए हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी की समझ को बढ़ाने में निश्चय ही योग दिया है, विशेषतः इसे फंतासी के रूप में व्याख्यायित करके उन्होंने रचना के स्थूल कथानक का रंग काफी हल्का कर दिया है। वे मानते हैं कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। कामायनी एक विचार, पृष्ठ 14। वस्तुतः मुक्तिबोध की पुस्तक कामायनी के पुनर्मूल्यांकन की पहली महत्वपूर्ण कोशिश है, और जीवन की पुनर्रचना कहकर ही लेखक ने उसकी व्याख्या समकालीन शब्दावली में करनी चाहिए है। पुस्तक का शीर्षक भी है कामायनी एक पुनर्विचार। मुक्तिबोध की यह समीक्षा निश्चय ही विचारोत्तेजक है तथा और भी अधिक सार्थक हो पाती यदि वे अपने मार्क्सवादी चिंतन को यहाँ स्थान पर स्थापित करने का आग्रह न करते। यह वैसा ही है जैसा कि कामायनी को सहवागम के माध्यम से समझना, फिर मार्क्सवाद को लाना एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी और भी बड़ी गलती करना है। पुस्तक की एक रोचक विडम्बना यह है कि कामायनी को फंतासी के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी वह अंत में मन के हिमालय जाने को वैसी ही स्थूल घटना के रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि दिनकर की समीक्षा में किया गया है, वही पृष्ठ 26। अब तक तो बड़ी बेशर्मी और एक तरह से अकृतज्ञ जैसे भाव के साथ कामायनी के समीक्षा क्रम में दोष दर्शन का कार्य करता आया हूँ, पर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में यह अनिवार्य भूमिका है और मेरा अनुरोध है कि इसे किसी भी तरह के साहित्यिक दंभ के रूप में न ग्रहण किया जाए। अब कामायनी के प्रति जैसी कुछ दृष्टि मैं विकसित कर पाया हूँ उसका संक्षिप्त उल्लेख करूँगा। यूँ कुछ संकेत तो विवेचन के पिछले अंश में भी उभरे हैं और इस दृष्टि में रचना को उसकी समग्रता में उसके संश्लिष्ट रूप में देखने की प्रतिज्ञा अंतर्निहित है। यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि यह दृष्टि जितनी कामायनी को समझने के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए उतनी ही वह स्वयं कामायनी तथा अन्य समकालीन कृतियों के अध्ययन से अवतरित है। कामायनी के अर्थ और अनुभव को ठीक ठीक ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि हम इस रचना के समग्र विधान का वैशिष्ट्य समझें। यहाँ विधान स्पष्ट ही काव्य रूप या शैली की परंपरित धारणा से अलग है और देखें कि वह समकालीन जीवन दृष्टि को कहाँ किस रूप में परिपूर्ण तथा समृद्ध बनाता है और अंत में हीन क्रम की दृष्टि से नहीं यह परिलक्षित करें कि कमजोर आधार भाषा के बावजूद कवि के कुशल बिंब प्रयोग कहाँ हैं, क्योंकि कवि की मुख्य भाषा तो उसके बिंबों में से ही विकसित होती है। रचना की परिकल्पना, उसका समूचा विधान और बिंब गठन, इनको एक ही प्रक्रिया का अंग मानकर हम कामायनी का अनुभवन करने की चेष्टा करें। हर महत्वपूर्ण काव्यकृत की तरह कामायनी का अपना विशिष्ट विधान है। रामचरितमानस, सूर सागर, उद्धव शतक और आंसू या अंधायुग का वैशिष्ट्य मूलतः उनके विधान का वैशिष्ट्य है, जिसमें रचना की पूरी परिकल्पना उभरती है। विधान की यह धारणा कुछ कुछ वैसी ही है जैसी कि मानव व्यक्तित्व की, यानी रचना का व्यक्तित्व ही उसका विधान है। यहाँ विधान के इस रूप में वस्तु पक्ष और कला पक्ष का सतही विभाजन विलीन हो जाता है। कामायनी के विधान में एक बड़ी समग्र और जटिल परिकल्पना का रूप उभरता है। आज मानव का रूप एक ओर है तो श्रद्धा और ईड़ा के प्रथम साक्षात्कार की प्रभु विष्णुता दूसरी ओर। इन चरित्रों की परस्पर टकराहट की पृष्ठभूमि में देवदानों के सांस्कृतिक संघर्ष का रूप है तथा मानवीय संस्कृति पिछली संस्कृतियों से कैसे भिन्न और अधिक सार्थक रूप में विकसित होती है इसका आख्यान है। देव संस्कृत से मानवीय संस्कृत इस माने में भिन्न है कि वह नश्वर है। मनुष्य की यह नश्वरता उसकी सर्जन शक्ति को चुनौती देकर विकसित करती है और उसे प्रेम करने की शक्ति प्रदान करती है जो विलासी देव सृष्टि में नहीं थी। रचना के ये अंश श्रद्धा, काम और लज्जा सर्ग में विकसित होते हैं और फिर ईड़ा सर्ग में काम का लंबा डरावना श्राप आता है जिसे मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से अपने लिए एक वरदान या वैशिष्ट के रूप में बदलता है। मनुष्य को वरण की स्वतंत्रता काम के अभिशाप के रूप में ही मिलती है। हाँ, अब तुम बनने को स्वतंत्र। यह सारी प्रक्रिया जिसे नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है बड़े जीवन चक्रों के हाथ में लेना पेचीदा भावधाराओं और सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उठी हुई जटिल समस्याओं का निरूपण करना व्यक्ति देश और जात के जीवन के बृहद छाया आलोकों को उद्घाटित कर सकना सारांश यह कि जीवन के गहरे और बहुमुखी घात प्रतिघातों और विस्तृत जीवन दशाओं में पद पद पर आने वाले उद्वेलनों को चित्रित करना उन्हें संभालना और अपनी कला में उन सबको सजीव करना। जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ 9। प्रसाद के उस संश्लिष्ट काव्य विधान का अंग बनती है जो न महाकाव्य के निकट है और न खंड काव्य के और न जिसमें स्थूल कथा का आग्रह है न रूपक का वरन जिसमें युगबोध के साथ और उसके निर्माण के लिए भी अर्थ को और अनुभव को विकसित करने की पूरी स्वाधीनता और स्वायत्तता है। रचना में जीवंत व्यक्ति जैसी यह स्वाधीनता और स्वायत्तता की स्थिति संभव हो जाना ही उसकी सफलता और सार्थकता का चरम स्तर है। कामायनी के विधान की यह मौलिक विशेषता है कि पूरी रचना का अर्थ एक नहीं है पर रीतकालीन श्रेष्ठ काव्य की तरह दो अलग अलग अर्थ भी नहीं है वरन एक ही अर्थ के स्तर अपने तनाव और संश्लेष से एक बृहत्तर अर्थ की सृष्टि करते हैं। रचना के क्षेत्र में यह अर्थ का अद्वैत है जो छायावादी काव्य खास तौर से कामायनी की विशिष्ट रचना प्रक्रिया और उपलब्धि है। रचना में अर्थ का अद्वैत भाव संभोग और अध्यात्म जैसी सृजन प्रक्रियाओं के समानांतर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रसाद की कविता विषाद झरना में संकलित में हृदय में विषाद और बाहर छाया मानो एक ही अनुभव के अंग हैं। एलियट ने जिसे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव कहा है छाया कुछ वैसी ही है पर असल में तो छायावाद और उत्तरोत्तर आधुनिक कविता में अर्थ का द्वैत है। एक अर्थ नहीं है दो भी नहीं है वरन अर्थ के दो स्तरों के तनाव और संश्लेषण से अर्थ की गहरी क्षमता विकसित हुई है। भाषा के सामान्य प्रयोग में बात और जिस भाषा में वह बात कही जा रही है उनके बीच अंतर हो सकता है पर कविता की भाषा में यानी अधिकतम सृजनात्मक भाषा में यह अंतर नहीं रह जाता बात और भाषा में अभेद रहता है। प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने अभिधा और व्यंजना का जो रूप माना है उसमें स्थित इसके विपरीत कुछ विपरीत है। वहाँ बात और भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत सीधा संबंध नहीं रह जाता वस्तुतः ऐसा मानना व्यंजना और सृजनात्मकता के चमत्कारी पक्ष पर अधिक बल देना है। पर जब हम बात और भाषा के अभेद और अद्वैत की बात कहते हैं तो हम तनाव पर उतना ही बल देते हैं जितना कि अभेद पर। अनुभव और अर्थ का यह अद्वैत समझना कविता और सृजनात्मकता की प्रक्रिया को अधिक गहरे और प्रकृत रूप में समझना है। यही भाषा और संवेदना का अद्वैत है जहां दोनों एक नहीं हैं पर अलग अलग होकर भी एक हो जाते हैं। इस अर्थ प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने दृष्टि को किन्हीं प्रतिमानों से न बांधें। पुराने प्रतिमानों को अस्वीकृत कर नए प्रतिमानों को स्थापित करने की चेष्टा एक गलती को देख और दिखा कर भी उसके स्थान पर उससे बड़ी दूसरी गलती करने जैसा है। रचना में अंतर्निहित अनुभव तभी ठीक ठीक ग्रहण किया जा सकता है जब हम प्रतिमानों को निरुत्साहित करके वैशिष्ट पर बल दें और वैशिष्ट की अपनी अनुभूति को प्रतिमान कहकर दूसरों पर आरोपित करने की चेष्टा न करें। वैशिष्ट के प्रतिमानीकरण में एक अंतर विरोध का भाव निहित है। प्रश्न यह है कि अर्थ के स्तर पर रचनात्मक स्वाधीनता और स्वायत्तता काव्य कृति में विकसित कैसे होती है। अर्थ के इस संचरण का माध्यम हमें विशेषतः बिंब या भाव चित्र के विधान में मिलता है। यहाँ पर प्रतीक और बिंब के अंतर को संक्षेप में ही सही समझना आवश्यक है। प्रतीक किसी भाव स्थित को द्योतित करने वाला एक शब्द होता है जैसे कमल या क्रूस या सूर्य जो क्रमशः स्निग्धता कष्ट सहिष्णुता तथा ज्ञान के प्रतीक हैं। बिंब का भाव चित्र बिंब या भाव चित्र की प्रक्रिया अधिक संश्लिष्ट होती है। वह कई तत्वों से निर्मित होने के कारण स्थिर न रहकर गतिशील होता है और उसका प्रतीक की तरह पूर्व स्वीकृत अर्थ नहीं होता। इसीलिए कविता में अर्थ को स्वायत्त तथा विकसनशील बनाए रखने का मुख्य दायित्व बिंब पर होता है। अधिकतर समीक्षक बिंब का महत्व उसके चाक्षुष संवेदन के कारण मानते हैं। बिंब में चित्र का भाव आता जरूर है, पर चित्र का दृश्य भाव यहाँ प्रधान नहीं है, और चित्र का संश्लिष्ट रूप कंपोजिशन होना प्रमुख बात है। इस तरह चाक्षुष पक्ष यानी कि एक दृश्य प्रतिमा का निर्माण कर सकना तो वस्तुतः बिंब विधान का एक प्राथमिक और गौण स्तर है। मुख्य बात यह है कि संश्लिष्ट गठन होने के कारण बिंब में उसके विभिन्न तत्वों के बीच संपर्क और टकराहट से एक द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक प्रक्रिया निहित रहती है, जो अर्थ को विकसनशील और स्वायत्त बनाती है। इस तरह बिंब प्रधानतः और अनिवार्यतः एक अर्थ संश्लेष है, और इसीलिए रचना में काव्य भाषा या कि काव्य बनने की मुख्य प्रक्रिया है। कवि प्रसाद के कृतित्व की यह एक विचित्रता कही जाएगी कि उसमें जगह जगह सामान्य वर्णन की भाषा का रूप काफी कमजोर है, लगभग लचर जैसा। इसलिए जब दिनकर कहते हैं कि कामायनी में खड़ी बोली का जितना असमर्थ रूप प्रकट हुआ है, उतना असमर्थ रूप किसी और काव्य में नहीं मिलता। कामायनी में ऐसे अंश कम हैं जिन्हें पढ़ते हुए मन पर अप्रियता के धक्के न लगते हों। अभिव्यक्त की असमर्थता और शब्दों के कुप्रयोग से पाठक का मन न खींचता हो। पंत प्रसाद और मैथिली शरण पृष्ठ 71। तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन इतनी कड़ी आलोचना के बाद फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे कामायनी को आधुनिक काव्य की एक श्रेष्ठ और स्पृहणीय कृत के रूप में माना जाता है। इस समस्या का हल प्रसाद के अप्रतिम बिंब विधान में पाया जा सकता है। कमजोर आधार भाषा के बावजूद इतना कुशल बिंब प्रयोग साहित्यिक इतिहास की एक असाधारण पर सुखद विडंबना है। वर्णन की भाषा काव्य भाषा का प्राथमिक स्तर है, और बिंब गठन भाषा का अधिकतम सर्जनात्मक स्तर है। यह समझना होगा कि काव्य की हर पंक्ति कविता नहीं होती, भले ही काव्य बनने की प्रक्रिया में वह कुछ सहायता देती हो। ऋष्यमुख पर्वत निराई जैसे स्थूल वर्णनात्मक अंश हर काव्य में मिलना अनिवार्य है, प्रसाद में वर्णन की यह भाषा जितनी अव्यवस्थित उबड़ खाबड़ है, भाषिक बिंब गठन की क्षमता उतनी ही अधिक है। कामायनी को लेकर प्रायः हर सजग पाठक के मन में जो आकर्षण विकर्षण एबीवेलेंस चलता है, उसका एक प्रधान कारण इन दो भाषिक स्तरों की विफलता और सफलता एक साथ है। ऐसा शायद इसीलिए हो कि काव्य में अपना समूचा ध्यान बिंब गठन पर ही केंद्रित करके प्रसाद ने सामान्य वर्णन भाषा की उपेक्षा की हो, अन्यथा गद्य में तो प्रसाद की वर्णन भाषा कहीं ऐसी अक्षम नहीं है। सैद्धांतिक स्तर पर भी काव्य को अनुभूत प्रधान मानने के कारण दृष्टांत प्रसाद का निबंध काव्य और कला पृष्ठ 43-44। प्रसाद सामान्य शब्द विन्यास तथा भाषिक गठन की चिंता नहीं करते। बिंब विधान के इस प्रसंग को समेटने का उपाय यही है कि रचना से कुछ उदाहरण देकर अपनी बात को व्यावहारिक स्तर पर समर्थित किया जाए। श्रद्धा की मुस्कान का प्रसिद्ध अंकन श्रद्धा सर्ग से, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, या मन के चले जाने पर श्रद्धा का रूप। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का अब उसमें है रंग कहाँ। और फिर ईड़ा के वर्णन में एक छोटी सी पंक्ति वह नयन महोत्सव की प्रतीक। सौंदर्य साहित्य में सौंदर्य अंकन की जितनी भाषिक प्रक्रियाएं हैं, उनमें नयन महोत्सव का यह बिंब अनायास ऊपर उभर कर आ जाता है। श्रद्धा के हास का वर्णन है। श्याम नभ में मत किरण सा, फिर वही मृदुहास, सिंधु के हिलकोर दक्षिण का समीर विलास। और नटराज के नृत्य प्रसंग में हिमालय का चित्र है। यद्यपि इन अंतिम सर्गों में सामान्यतः काव्य का रूप काफी क्षरित हो गया है। हीरक गिर पर विद्युत विलास, उल्लसित महाहिम धवल हास। बिंब गठन की यह प्रक्रिया कामायनी के रचना विधान का अभिन्न अंग है और जटिल अनुभव अर्थ संश्लेष को उसकी समग्रता में पकड़ने तथा व्यक्त करने का अचूक माध्यम है। साहित्य यदि विखरे और खंडित जीवन की पुनर्रचना है तो बिंब विधान इस पुनर्रचना की प्रक्रिया है। काव्य जीवन को अर्थवत्ता प्रदान करता है और काव्य की अर्थवत्ता बिंब से निर्मित होती है। कामायनी की रचना दृष्टि काव्य के स्तर पर समकालीन जीवनानुभव में जो कुछ जोड़ सकी है वह इन बिंब मालाओं के ही कारण। अन्यथा यह स्पष्ट है कि उच्च स्तर के काव्य दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र की साक्षात्कार प्रक्रिया में अंतर बहुत सूक्ष्म रह जाता है। मानवीय संस्कृति के आधुनिक संकट को प्रसाद ने कामायनी में अच्छी तरह पहचाना है। सच तो यह है कि कामायनी अब से प्रायः 35 वर्ष पूर्व जब प्रकाशित हुई थी तब से उसके अर्थ संगत वर्तमान अणुयुग में कुछ अधिक ही हुई है। अति भौतिकता, अति यांत्रिकता और अति बौद्धिकता के जिस खतरे की ओर प्रसाद संकेत करते हैं उसका संदर्भ पहले से अधिक फैला है। यह स्वाभाविक और उचित था कि जो रचनाकार मानव के सांस्कृतिक विकास की सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत करे वह केवल इतने से ही संतुष्ट न रहकर उस संस्कृत के वर्तमान संकट के विश्लेषण में प्रवृत्त हो और विघटन के प्रतिकार का उपाय भी संकेतित करे। यह ठीक है कि दार्शनिक शब्दावली के स्तर पर बहुचर्चित होने के कारण भी प्रसाद का समरसता भाव और आनंद की धारणा स्थूल समाधान परक दृष्टि के द्योतक अधिक हो गए हैं, पर रचना की सूक्ष्म प्रक्रिया मध्यकालीन संन्यास प्रधान आदर्श के विरोध में एक समृद्ध और समग्र दृष्टि की प्रस्तावना करती है। जहाँ भारतीय पुनर्जागरण के आधार ग्रंथ गीता का निष्काम कर्म नहीं है, वरन जहाँ कर्म भोग को प्रेरित करता है और भोग कर्म को, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इस तरह प्रक्रिया और निष्पत्ति और फिर प्रक्रिया का एक अनवरत क्रम चलता है। रामकृष्ण विवेकानंद और तिलक के युग में गीता की विराट दृष्टि में भी कुछ जोड़ने का उपक्रम हिंदी कवि की उपलब्धि को अधिक स्पृहणीय बनाता है। कामायनी की रचना दृष्टि, उसे व्यंजित करने वाली बिंब माला और उसका विधान एक संपृक्त रूप में विकसित हुए हैं। इसकी सही पहचान का उपक्रम ही किसी भी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को सार्थक बना सकता है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, इस पुनर्मूल्यांकन के दौरान हम रचना के सही रूप की खोज नहीं करते, वरन अपनी साहित्यिक समझ को भी अधिक सही दिशा में गतिशील करते हैं। यह एक साहित्यिक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कामायनी को लेकर हिंदी साहित्य में प्रारंभ से ही आत्यंतिक धारणाएं विकसित होती रही हैं। कुछ हैं जो कामायनी को युग युग की सर्वश्रेष्ठ रचना घोषित करना चाहते हैं और ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि कामायनी का महत्व केवल इसलिए है कि वह अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है। इस विभ्रम परक विवाद के चलने में जो कुछ कारण रहे हैं उनका मैंने एक संक्षिप्त विश्लेषण ऊपर किया है। सही यह है कि समीक्षा क्षेत्र में रचना के प्रति धूप दीप की दृष्टि न होकर उन्मुखता की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी संपृक्त और खुली दृष्टि से ही कामायनी के वैशिष्ट को समझा जा सकता है और आगे अर्थ विकसित होने की संभाव्य दिशा भी संकेतित हो सकती है। इस समूचे संदर्भ में कथाकार और समीक्षक इला चंद्र जोशी के कामायनी शीर्षक लेख का उल्लेख प्रासंगिक होगा। जो कामायनी के प्रकाशन वर्ष 1937 में ही छपा था आरंभिक समीक्षा निबंध के रूप में। यहाँ छायावाद युग के रचनाकार ने समकालीन काव्य संवेदना के चरम विकास बिंदु को ठीक ठीक पहचाना है, जहाँ आलोच्य कृति और समीक्षक की समझदारी के बीच संतुलन बनता दिखाई देता है। संकेतित ग्रंथ कामायनी जल संकल्प सात प्रथम प्रकाशन 1937 प्रयुक्त संस्करण सातवां। दो काव्य और कला तथा अन्य निबंध जल संकल्प सात मरणोत्तर प्रकाशन 1939 प्रयुक्त संस्करण पांचवा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1942 ईस्वी। छायावाद और प्रसाद विषयक विवेचन दो वर्ष पूर्व के संशोधित और परिवर्धित संस्करण में ही आ गया था। चार जय संकल्प सात नंदुलारे वाजपेयी 1940 हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 पंत प्रसाद और मैत्री शरण दिनकर 1958 कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध 1961 कामायनी के अध्ययन की समस्याएं नगेंद्र 1962 प्रसाद और उनकी कविता विश्वंभर मानव 1962।